गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। किसे प्यारे ने हुक्म कीता सी कि जपजी साहब दियां पहलियां पंज पौड़ियां दियां व्याख्या जो भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने कीतियां हन वह पढ़ के सुनाओ। सो संगत दे हुक्म नूं मुख रखदे आं, सो अज आप जी नूं भाई साहब भाई वीर सिंह जी दी जिहड़ी जपजी साहब दी व्याख्या कीती है वह सरवण कराउण की कोशिश करांगे संगत दे हुक्म नूं मन के। सो इस दे अर्थां नूं सरवण करन तों पहलां जो इस पुस्तक दा संथिया करम है वह इस प्रकार है। संथिया करम, इस पुस्तक विच आए पावन मूल ते अर्थ आदि दे करम दी व्योंत इस प्रकार है। पहला है प्राकथन, इस विच शब्द दा अत संखेप तात्पर्य दिता गया है। दूसरा है मूल ते अर्थ, प्राकथन तो अगे कुछ मुटेरे अखरां विच मूल है, अर्थात गुरबाणी दा पाठ ते गुरबाणी दे मूल पाठ दे सामणे कुछ बरीक अखरां विच अर्थ हैं जिन्हां विच अखरी अर्थ दित्ते गए हैं। तीसरा है व्याख्या, इस विच शब्द दे भाव अर्थ पर अखर दे मेल ते होर विचारां दित्तियां गईयां हैं जिन्हां तों शब्द दी वधीक तों वधीक समझ पै सके। चौथा है निरुक्त, इस पद दे अखरी अर्थ हन विशेष उक्ति, अर्थात कोई गल जो कही गई उस संबंधी ही विशेष या होर पहलुआं तों वाकफियत देनी। सो असां इस पद नूं इन्हां अर्थां विच वरत्या है तां कि अर्थां ते व्याख्या विच जो गल्लां नहीं आ सकियां वह इस अंक विच विशेषता नाल वर्णन कीतियां जाण। पद निरुक्त इत्थे केवल इन्हां अर्थां विच वरत्या गया है। इस पद निरुक्त दे होर कई अर्थ भी हन। दूसरा अर्थ निरुक्त दा जो वर्णन ना हो सके, जैसे दसम पातशाह जी दा वाक है निरुक्त स्वरूप है। तीसरा अर्थ निरुक्त एक अलंकार दा नाम भी है। चौथा अर्थ, ये शब्द वेदां दे अर्थ संबंधी पुरातन समय विच वरत्या गया है। आओ हुण अर्थ सरवण करन दी कोशिश करिए जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद। जप, प्राकथन, इस पहले महावाक विच अकाल पुरख दा स्वरूप वर्णन है जो सिख धर्म दा मूल है ते यही श्री गुरु ग्रंथ साहिब ते जपजी साहिब दा मंगलाचरण भी है। मूल, एक ओंकार अर्थ एक तव है निरंकार जो नानतव विच ओंकार रूप होके फिर एक तव है। ओ एक तव सदा थिर एक तव है, उसका नाम ही है सत्य। मूल, सतनाम करता पुरख अर्थ अर्थात सदा थिर रहन वाला चेतन वजूद, ओही दिस रही ते ना दिस रही नानतव दा रचनहार है। निरी कोई निर्जिंद शक्ति जां सता मात्र नहीं, पर ओ पुरख है। पुरख ओ जीव अर्थां विच नहीं, पर जीव श्रेणी दे बनाउण वाला करता पुरख है। मूल, निरपाओ निरवैर अर्थ ब्रह्मादिका वांगू देवता श्रेणी विचों भी पुरख नहीं, जो भय ते वैर विरोध विच आए ओ तां डर तों रहत है वैर तों रहत है। मूल, अकाल मूरत अजूनी सैभंग अर्थ ब्रह्मादका वांगू देवता श्रेणी इन्हां सभना तों ओ इउं भी उच्चा है कि ये सारे काल विच आए पर ओ अकाल काल रहत है। अकाल हो के ओ अणहोंद नहीं, ओ मूरत यानि होंद है, अर्थात उसका वजूद या स्वरूप है जो स्वरूप के काल तों रहत है। सो उसका वजूद जीवां या होरां वडकियां वांगू जन्म विच आउणे वाला नहीं, वह अजोनी है अर्थात जोन विच नहीं आउंदा। भाव ए कि उस दे वजूद दा कोई कारण नहीं, सगों ओ तां अपने आप तो आप प्रकाश स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, अर्थात उसकी चेतनता उसका सुते ही अपना स्वरूप है। मूल, गुरप्रसाद अर्थ ऐसा है वह सत्य स्वरूप अकाल पुरख जिसका प्रतिपादन जपजी विच होना है वह गुरु की कृपा नाल प्राप्त होता है। व्याख्या, ये मूल मंत्र है, इस विच श्री गुरु नानक देव जी ने अकाल पुरख का स्वरूप वर्णन किया है। भाव यह है कि जपजी विच ते सारी गुरबाणी विच जिस जपण योग निरंकार का वर्णन ते गुण गायन होना है उस दा स्वरूप दस्या है कि ए है। ए मूल मंत्र मंगलाचरण भी है। ए मंगलाचरण वस्तु निर्देश मंगलाचरण है, अर्थात पवित्र बाणी विच जिस अकाल पुरख दा वर्णन होना है उसे दा स्वरूप लक्षण गुण कीर्ति आदि मंगल विच संखेप कथन कीते गए हैं। व्याख्या जारी। एक अंक है जो गुरु जी ने अपने अकाल पुरख दा वाचक वर्त्या है। जिस अकाल पुरख दा के चिंतन ध्यान प्रेम आदि जप साहिब विच दसना है उथे उसनू एक करके दसदे हैं। यथा साहेब मेरा एको है भाई एको है। ए एक आप जी ने जप जी दे मुड विच संख्या वाचक विशेषण करके नहीं वरत्या पर संज्ञा करके वरत्या है जो उस दे स्वरूप दा लखायक उस दा नाम है। इस दा अर्थ गुरु जी ने आप एवं कीता है। एकम एकंकार निराला अमर अजोनी जात ना जाला अगम अगोचर रूप ना रेख्या। अर्थ एकम यानी थिति द्वारा उपदेश करदे हन के अकाल पुरख जो है सो एक है, सब तो अलिप्त है, वो मृत्यु ते जन्म तो रहत है, उसकी कोई जात किस्म नहीं, मन बुद्धि दी पहुँच तो परे है, इंद्रियां तो अलग है, उसका रूप कोई नहीं, चिन्ह कोई नहीं। प्रश्न होंदा है कि वो है किथे, तां दसदे हन खोजत खोजत घट घट देखिए कि जो नान तव देख रहे हो इस विच खोज करदे हां असां घट घट विच उसनू देखिया है। भाव ए होया कि वो अपनी एक तव विच सदा एक है, जद एक है तां एक है, जद नान तव विच देखो तां घट घट विच है, पर वो घट घट विच होण करके पर छिन्न नहीं हो गया। वो नान तव विच भी आप एक दा एक ही है। वो एक कैसा है? वो अदुत्ती है। हाँ, ए उस एक दी शर्त है कि वो एक है और अदुत्ती एक है। यथा एकंकार अवर नहीं दूजा नानक एक समाई, अर्थात वो केवल एक है, दूजा होर कोई नहीं, वो ही एक जो दूजा नहीं सारे समा रहा है। प्रश्न होंदा है वो पाया की कू जाए, तां दसदे हन एक को एक कहे सब कोई, होमें गर्भ व्यापे अंतर बाहर एक पछाणे, इं कर महल सिंजापे, प्रभु नेड़े हर दूर न जाणो, एको सृष्ट सबाई, एकंकार अवर नहीं दूजा नानक एक समाई। अर्थ एक है, एक है कह तां सब कोई लैंदा है, पर कहण मात्र नाल सियाण नहीं हुंदी, क्योंकि कहण वाले दियां चित बिरतियां हौं ते अहंकार विच फसियां होईयां हन। जद इस हौं नूं छड के अंदर बार व्यापक एक नूं पछाण लवे तां उस दा स्वरूप पछाण हो जांदा है। ओ प्रभु नेड़े है दूर नहीं, सृष्टि सारी विच व्यापक है। हाँ, ओ केवल इको है, दूजा होर कोई नहीं, ओ सारे परिपूर्ण है। फिर फुरमाउंदे हन एक है कौ सच एका जाने, होमें दूजा दूर किया। जदों कोई होमें रूपी द्वैत नूं दूर कर लेगा तदों इस एक नूं सचमुच एक जान लवेगा। पंजवें गुरु जी ने फरमाया है कि निरंकार निरंजन निरपौ सब जल थल रहा समाई, जो केवल एक तव है, अपने निरंजन स्वरूप विच है, निरपौ है, वो ही नान तव या अनेकता विच समाया भी एक ही है, वो मूल है, वह असलियत है, उसे दी एक तव तो नान तव होंदी है, पर तद भी उसकी एक तव अवदल यथार्थ ते ठीक ठीक एक ही रहती है। दसम पातशाह जी का वाक है, प्रणवो आद एकंकारा जल थल मैयल कियो पसारा, आद पुरख अद्वै अबनासी लोक चतरदस जोत प्रकाशी। गुरु जी दे लिखे इस एक ने सानू ए भी दसिया कि अनेकता या नानतव या सृष्टि जो कुछ कहो इसका मूल शून्य अणहोंद या मनफियत नहीं, पर होंद है जो एक है। दृश्य अदृश्य इस इको थिर हस्ती का पसारा है जो सदा अद्वै है, आद पुरख अद्वै अविनाशी। साधन पक्ष गुरु नानक देव जी का वाक है, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਏਕ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਇਉਂ ਕਰ ਮਹਿਲ ਸੰਜਾਪੇ। ਪੁਨਾ ਏਕ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ, ਤਿਸ ਕੀ ਕਟੀਏ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਸੋਨਾ ਚਿਨਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਏਕ ਸਰੇਵੈ ਤਾਂ ਗਤ ਮਿਤ ਪਾਵੈ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹਾਈ। ਉਸ ਨਿਰੰਜਨ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੇਵੇ ਕੀ ਕੂ। ਉੱਤਰ ਏਕੋ ਏਕ ਬਖਾਨੀ ਹੈ, ਬਿਰਲਾ ਜਾਣੈ ਸਵਾਦ। ਪੁਨਾ ਏਕੰਕਾਰ ਨਾਮ ਉਰਧਾਰੰਗ, ਕੁਲੈ ਸਮੂਹ ਸਗਲ ਉਧਾਰੰਗ। ਪੁਨਾ ਆਦ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰਮਲ ਸੋਈ, ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ। ਏਕੰਕਾਰ ਵਸੈ ਮਨ ਪਾਵੈ, ਹੋਮੈ ਗਰਭ ਗਵਾਇੰਦ। ਫਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਏਕ ਬਿਸਥੀਰਨ, ਏਕ ਸੰਪੂਰਨ, ਏਕ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਕੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋ ਵਾਰਿਆ ਭਾਈ, ਜਿਨ ਏਕੰਕਾਰ ਆਧਾਰ। ਪੁਨਾ ਏਕੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈਐ, ਹੋਂ ਬਲ ਬਲ ਗੁਰ ਦਰਸਾਇਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਇੱਕ ਬਾਬਤ ਐਂ ਵੀ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਅਰਥਾਤ ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਇੱਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।